ओम शांति। आज गुड मॉर्निंग के साथ क्या कहेंगे? जय श्री कृष्ण। क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हमसे ज्यादा खुशी किसको होगी? भक्त तो केवल परंपरा से निभाते, लेकिन हम आज बाबा ने कहा आपका हीरो हीरोइन का पार्ट है। हीरो हीरोइन माना हमने आदि से लेकर के अंत तक वो श्री कृष्ण की आत्मा के साथ पार्ट बजाया। शुरू में भी थे और अभी भी हम उनके सहयोगी हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं और उन जैसा बनने का पुरुषार्थ भी करते हैं। दूसरा, बाबा ने कहा सन्यासी लोग कहते गृहस्थ व्यवहार में रहकर शांति नहीं मिल सकती, वो जंगल में जाने से ही मिलती है। लेकिन बाबा कहते वहां भी नहीं मिलती तो कहां मिलती है? बोला शांति तो तुम्हारे गले का हार है, तुम्हारा स्वधर्म शांति है और आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से शांति मिलती है। दूसरा, बाबा ने कहा इन्हों को 84 लाख योनियों से भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो बोला भगवान कण कण में है, ठिकर भीतर में है। बाबा कहे मैं मनुष्यों के शरीरों में ही नहीं हूं तो ठिकर भीतर में कैसे हो सकता? तीसरा, बाबा ने कहा कि जब ब्रह्मा का फोटो देखते हैं तो प्रश्न करते हैं, लेकिन जिसका टोटल ड्रामा में आदि से अंत तक पार्ट है उसी में मैं प्रवेश कर सकता हूं, उसी में आ सकता हूं, दूसरे में मैं कैसे आ सकता हूं? दूसरे में मैं आता ही नहीं हूं। चौथा, बाबा ने हिसाब पूछा है कि मैंने तुमको इतना धन माल दिया वो कहां बर्बाद किया, कहां गंवाया? अब वो हिसाब देना पड़ेगा बाबा को। बाबा ने फिर कलयुगी बच्चों का एग्जाम्पल दिया है और लास्ट में बाबा ने कहा ये है राजस्व अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, इसमें सब शरीरों को स्वाहा करना है। तुम्हें भी अपना शरीर स्वाहा करना है क्योंकि तुम आत्म अभिमानी बनकर नई दुनिया में जाने का राज्य भाग्य पाने का पुरुषार्थ करते हो। तो सुनेंगे, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। साथ में सुनेंगे आज की मुरली की धुन। रोज मुरली कौन सुनता है? हम ही तो सुनते हैं। आज है 4/9/2026, मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं। बाप के पास पतितों को पावन बनाने का हुनर है, का सिर्फ ये हुनर है, लेकिन इसी से ही तो हम पावन बनते हैं। यही सबसे बड़ी विशेषता है या बाबा का कार्य है। आज का प्रश्न है, ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं उन्हें कौन सा राज समझाना है? उत्तर है, उन्हें समझाओ कि ये आदि सो अंत वाली आत्मा है, जो फर्स्ट प्रिंस कृष्ण है उनके ही लास्ट जन्म में बाप आते हैं। ये पतित तन है, इन्हें ही पावन बनाना है। ये कोई भगवान नहीं है, भगवान तो एवर प्योर है, उसने इसके तन का आधार लिया है। तो क्या समझाना है? बाबा ने बताया, आज का गीत है, बहुत सुंदर गीत है, मुखड़ा देख ले रे प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, तेरे दामन में। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि शांति के लिए कोई बाहर दर दर धक्का नहीं खाना है। जैसे हठयोगी सन्यासी समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति मिल नहीं सकती, शांति जंगल में मिलती है, परंतु बाप समझाते हैं शांति वहां भी नहीं मिल सकती। इस पर एक कहानी व दृष्टांत सुनाते हैं। सभी की बुद्धि में आ गया ना कौन सा दृष्टांत? कोर्स में भी एक सुनाते हैं कि रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी, बाहर ढूंढती थी, ऐसे शांति तो तुम्हारे गले में पड़ी है, बाहर कहां ढूंढते हो? बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। ये शरीर तो तुम्हारी कर्मेंद्रियां हैं जिससे तुमको पार्ट बजाना पड़ता है, आत्मा तो अविनाशी है। ये शरीर विनाशी है, आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, न विनाश होती है। हाँ, आत्मा पतित बनती है, इनको ही पावन बनना होता है। आत्मा को पहले किशोर शरीर मिलता है, फिर युवा, फिर वृद्ध। आत्मा तो है ही एक रस, पहले पहले तो आत्मा को जानना होता है। कोई भी आता है तो पहला लेसन कौन सा देते हैं? आत्मा का ही देते हैं ना, पहले खुद को पहचानना होता है। मैं आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनता हूँ, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी भव। सबसे पहला वरदान हमको मिलता है आत्म अभिमानी बनने का। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम दे अभिमानी बन पड़े हो, इसलिए अपने को शरीर समझ लेते हो, ये भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है। तो अपने को रियलाइज करना है। सभी आ गए ना आत्मिक स्मृति में। 84 जन्म भी आत्मा लेती है। अभी बाप ने समझाया है, जो ब्राह्मण बने हैं वही फिर देवता बनने वाले हैं। तो यहाँ सब कौन बैठे हैं? देवता बनने वाले बैठे हैं, श्री कृष्ण की दुनिया में चलने वाले बैठे हैं, श्री कृष्ण के साथ रास करने वाले बैठे हैं। ऐसे भी नहीं कि सब 84 जन्म लेते हैं, कोई पहले आएगा, कोई 50-100 वर्ष बाद भी आते रहेंगे, कोई के 80-82, कोई के कितने जन्म होंगे। हम सब कौन है? 84 जन्म वाले हैं, श्री कृष्ण के आरंभ से, शुरू से साथ में आने वाले हैं। ऐसे है ना सभी? मनुष्य तो 84 लाख जन्म कह देते हैं, इससे भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर कह देते कण कण में भगवान है। अब भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कण कण में कहते हैं तो भगवान उसका आंसर देते हैं कि मैं किसी मनुष्य तन में भी नहीं हूं, तो जानवर पत्थर ठिकर कण कण में कैसे होऊंगा? बाप ने समझाया है, नंबर वन ही लास्ट नंबर में तमो प्रधान बनते हैं। मैं खुद कहता हूं, बाबा अपनी गवाही खुद देते हैं। क्या देते हैं? कि मैं खुद कहता हूं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह तो जरूर पतित होगा, पावन तो हो नहीं सकता। बाप खुद कहते हैं, पहले नंबर में है श्री कृष्ण, फर्स्ट प्रिंस। श्री नारायण तो बाद में बनता है, जब बड़ा होता है, वो भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। वो नारायण तो बड़ा होगा, स्वयंवर होगा, उसके बाद नाम पड़ता है ना, तो 20-25 साल तो वो भी चले गए। तो श्री कृष्ण के ही कंप्लीट 84 जन्म कहेंगे, उनके भी 84 जन्म नहीं कहेंगे। नंबर वन है श्री कृष्ण, बल वही फिर स्वयंवर बाद नारायण बनते हैं। परंतु हिसाब तो बच्चों को करना है ना। पूरे 84 जन्म 5000 वर्ष श्री कृष्ण के ही कहेंगे, इसलिए कंप्लीट आत्मा वो एक ही है। तो बाप बैठ समझाते हैं, मैं कल्प कल्प उसी ही तन में आता हूं, जिसका आदि से लेकर अंत तक पार्ट है, दूसरे कोई में आ नहीं सकता हूं, ये पक्की बात है। और किसी के तन में बाबा आएगा? अगले इस संडे की मुरली में कहा ना कि बाबा मधुबन के सिवा कहीं नहीं आता, ये गारंटी कर ली। और ये भी बता दिया, दूसरे कोई में आ नहीं सकता हूं। अभी आने वाला खुद ही बता रहा है कि मैं किसी में नहीं आता हूं और कहीं भी नहीं आता हूं। हिसाब है ना, ब्रह्मा ही पहला नंबर ठहरा, मैं और कोई में आ कैसे सकता हूं? बाबा कहते मैं और कोई में आ कैसे सकता हूं। तुमसे बहुत लोग पूछते हैं, सिर्फ एक ही ब्रह्मा में क्यों आते हैं? परंतु ये हिसाब है ना, ये समझने की बातें हैं। इसके लिए गाया हुआ है क्या गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु व शंकर द्वारा स्थापना नहीं करते, ये और कोई का काम ही नहीं है। मनुष्य रचता और रचना को नहीं जानते, ये भी ड्रामा में नोंद है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ये अभी की बात है, जो होनी है वही होती है, वो बदल नहीं सकती। ये कितना ड्रामा में बाबा पक्का करा रहे हैं कि जो ड्रामा में है वही होगा, इसको बदल नहीं सकते। आज जो कुछ होता है फिर 5000 वर्ष बाद होगा। बाबा ने समझाया भी था, कोई भी बात ऐसी देखो तो बोलो ये कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू, कोई आश्चर्य की बात नहीं। कोई ऐसी भी घटना घट जाती है, लोग कहते अरे ऐसा होता है, बाबा कहते हैं नई बात नहीं, नथिंग न्यू, कल्प पहले जो हुआ था वो हुआ। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, एकदम ऐसा लिख दो। बाबा कहते हैं एकदम ऐसा लिख दो, अंदर गोट दो, अंदर पक्का कर लो। फिर बल्ब आकर पूछे, लिखने में कोई हर्जा नहीं है, ये लड़ाई पहले लगी थी, नथिंग न्यू। महाभारत की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी हुई थी। क्रिश्चियन ने भारत में आकर राज्य छीना, नथिंग न्यू, वो भी नथिंग न्यू। फिर कल्प बाद भी ऐसे ही होगा, मैं नथिंग न्यू तो सबके समझ में आ जाता है, लेकिन फिर होगा वो एक्सेप्ट नहीं होता है कि अभी जो हुआ फिर होगा। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, जिनके 84 जन्म पूरे हुए हैं वही पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये सब राज बाप ही बैठ समझाते हैं, और क्या समझाते हैं, बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है, इस कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। स्वास्तिका में चार भाग एक जैसे देखेंगे, इस स्वस्तिका का रहस्य भी किसी को पता नहीं है कि ये चार युगों की निशानी है। युग भी इक्वल है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग तो सतयुग को बहुत छोटा, कलयुग को बहुत लंबा दिखाते हैं ना, इसलिए बाबा कहते ये युग भी इक्वल है। बाप समझाते हैं कि देखो दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है, वो तो उस समय बाबा ने कहा, अभी तो और भी देखो क्या क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, कोई मून में जाते, कोई आग पर चलते, कोई पानी पर चलना सीखते, बहुत कुछ सीखते हैं ना, कलाएं सीखते हैं, अपना हुनर बताते हैं। बाबा क्या कहते हैं इसको, कई ब्राह्मण भी ऐसा सीखना चाहते हैं, तो बाबा इसका जवाब क्या देते हैं, ये सब है फालतू, इससे कोई फायदा नहीं। मनुष्य पावन बन मुक्ति जीवन में, मुक्ति में तो जा नहीं सकते, अगर ऐसा सीख भी लिया तो कोई मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी क्या? नहीं, थोड़े समय के लिए लोग ताली बजा देंगे, वाहवा कर देंगे, बस खत्म। कुछ भी करे परंतु वापस घर जा नहीं सकते, तो अब तो वो सीखना है घर चलने का, वो सीखना है नई दुनिया में जाने का, विकर्म विनाश करने का, दिव्य गुण धारण करने का, ये सब कलाएं सीखनी है। आत्मा को अपना घर और बाप का घर भूल गया है। आत्मा अपने को ही भूल दे अभिमानी बन पड़ी है। फिर मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं मंदिरों में महिमा? आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम नीच पापी हैं, हम लोग गाएंगे ऐसे? नहीं गाएंगे, अपनी ग्लानी करते हैं। बाप तो कभी पुजारी नहीं बनते। अच्छा, फिर सेकंड नंबर में कहेंगे शंकर भी एवर पूज्य है, तो राइट है? कहेंगे पहले शिव चलो मान लिया, ब्रह्मा को भी माना, अभी सेकंड नंबर में शंकर है, शंकर को मानेंगे? बाबा क्या उसका जवाब देगा? जो शंकर को पूज्य मानते हैं सेकंड नंबर, वो भी पुजारी नहीं बनते, उनका पार्टी यहाँ नहीं है, उसका कोई रोल ही नहीं है, केवल सिंबॉलिक है। इस स्टेज पर पार्ट है दो का, किसका? ब्रह्मा और विष्णु का। ब्रह्मा और विष्णु का क्या क्या पार्ट है ये दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, ये भी गाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करते हैं, उनका चित्र ही नहीं। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते, ऊपर शिव बाबा नहीं दिखाते, तो बाबा कहते हैं वो ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा कौन करा रहा है उसका ही चित्र नहीं रखते। मुख से कहते हैं परंतु वो कहाँ है? शिव का नाम लेते लेकिन वो कहाँ है? शिव क्या चीज है वो भी नहीं जानते। आत्मा के लिए कहते हैं ब्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। कितने शरीर लेते हैं कुछ भी पता नहीं। मनुष्य कितने दुखी हैं, रड़िया मारते रहते हैं, ओ गॉड फादर, जब से दुख शुरू हुआ है पुकारते आए हैं। ये भी समझाया गया है भारत में जब रावण राज्य शुरू होता है तो ऐसे नहीं और धर्म में भी रावण राज्य हो गया, वो तो शुरू होता है ना उनका, फिर वो अपने धर्म में सतो रजो तमो स्टेज होती है, लेकिन जो आदि से आने वाली आत्माएं हैं वो पहले तमो प्रधान हो जाती हैं। नहीं, उनको तो अपने समय पर सतो रजो तमो में आना ही है। ये कहानी सारी भारत पर है। श्री कृष्ण कहाँ आएगा? भारत में आएगा। वो कहाँ राज्य करेगा? भारत में राज्य करेगा। वो तो बायप्लॉट है, बाकी सब बायप्लॉट है। बाप बीच में ही आते हैं। भारत जब तमो प्रधान बन जाता है तो फिर सारा झाड़ तमो प्रधान बन जाता है, तब बाबा आ जाता है। उनको भी सुख दुख भोगना है। दूसरे धर्म जो बाद में आते हैं उनको भी सुख दुख भोगना है। पहले सुख भोगेंगे फिर धीरे धीरे दुख भी भोगेंगे। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं, वो बड़े शोभनीक होते हैं। तो नए नए धर्म होते हैं तो थोड़ा अपना जलवा दिखाते हैं ना, वाह वाह हो जाती है, लोग उसको बहुत मानते हैं, थोड़ा वो चमत्कार भी दिखा देते हैं। नयों को फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। पिछाड़ी में जो आते हैं उनका कुछ मान रहता है। एक जन्म में भी सतो रजो तमो से पास कर सकते हैं, परंतु उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि वो फिर नई दुनिया में आएंगे नहीं, और वो अपने को श्रेष्ठ बनाएंगे नहीं, वो अपने चेलों को भी नई दुनिया की राह दिखाएंगे नहीं, पावन बनाएंगे नहीं। वैल्यू किसकी होती है? वैल्यू तो उनकी है जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। तो वो कौन है? हम हैं। ऐसे नहीं कहेंगे बाबा ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। बाबा के लिए नहीं कह सकते, शिव बाबा के लिए नहीं कह सकते। वो तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, खुद पतित नहीं बनते हैं। तो पतित से पावन बनने की मेहनत करते हो, श्रीमत पर राजयोग से ही राज्य लिया था, अभी तुम फिर ले रहे हो। बाबा कहते हैं, मैं तो राज्य नहीं करता हूँ, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो कितने वंडरफुल बात है, बाबा खुद राज्य नहीं करता है लेकिन हमको राजाओं का राजा बनाता है। कितना निरंकारी है, निस्वार्थ सेवाधारी है। अब दुनिया में मनुष्य कहते तो बहुत हैं, क्या कहते हैं, हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन भगवानुवाच्य क्या है? मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, और कोई बना सकता नहीं है। परंतु उनका अर्थ न खुद समझते हैं, न किसको समझा सकते हैं। भगवानुवाच्य, जब भगवानुवाच्य अक्षर बोलते हैं, माना तो जरूर भगवान आया था, तब तो बोला, आया ही नहीं तो बोला कहाँ से? तब तो कहा होगा ना, हे बच्चों, भारत में ही शिव जयंती शिवरात्रि मनाते हैं, तो शिव जयंती मनाते, शिवरात्रि मनाते, माना शिव बाबा आया और अपने बच्चों से बातें की, इसलिए भगवानों वाच्य भी है, हे बच्चों शब्द भी है। बाप आते भी हैं कहाँ? भारत में। भारतीय अविनाशी खंड है, उनकी महिमा बहुत भारी है। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे किसकी है महिमा अपरम अपार है? भारत की महिमा भी अपरम अपार है। कहते हैं ना, मेरा भारत महान। वो कैसे महान है वो हम जानते हैं। वो लोग सिर्फ बोलते हैं मेरा भारत महान, लेकिन वो महान कौन बना रहा है, क्यों महानता गाई है, वो बाबा आकर बताते हैं। क्यों महानता गाई है, क्यों भारत महान है? भारत में ही परमपिता परमात्मा आकर सब मनुष्य मात्र की सद्गति करते हैं, सबको सुख देते हैं। उनका बर्थ प्लेस भारत है, भारत ही प्राचीन देश है। भगवान राजयोग सिखलाने कहाँ आया था? भारत में आया था। परंतु श्री कृष्ण को भगवान कह देने से उनकी महिमा नहीं रही है। शिव बाबा को भूल गए हैं। शिव बाबा ने कैसे भारत को श्रेष्ठ बनाया, कैसे सदगति की, सब भूल गया। भगवान तो है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। बाकी गुरु तो ढेर हैं। कोई धंधा सिखलाने वाले को भी गुरु कह देते हैं। कोई हुनर सिखलाता है, लेकिन किसी ने कुछ सिखाया, गाड़ी सिखाई, तो कहेंगे ये मेरा गुरु है। किसी ने कुकिंग सिखाई, कुकिंग क्लास में जाते हैं ना, कहेंगे ये हमारा गुरु है। और भी कई हुनर सीखते हैं तो कहेंगे ये हमारा गुरु है। आजकल तो सबको अवतार मान लेते हैं। जो नया आया, कोई आत्मा आई, धर्म स्थापित किया, मत स्थापित किया, तो कहेंगे ये भगवान का अवतार है। कुछ भी समझते नहीं। क्यों नहीं समझते कि भगवान के कार्य का ही पता नहीं है। अवतार है तो क्या करना चाहिए, क्या करे तो अवतार माने, ये पता ही नहीं है। जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं तब पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बापी आकर के सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। अमर कथा भी ये है, मुरली भी ये है, सब ये है। लोग तो केवल बंसुरी को आज सजा देंगे ना, बांसुरी रख देंगे कृष्ण के आगे सजा के, लेकिन हम रोज सवेरे सवेरे उठकर बांसुरी की धुन सुनते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम 84 जन्मों में कैसे आते हैं। पहले अच्छा जन्म, सबसे पहले अच्छा जन्म, फिर उतरते जाएंगे। दुनिया की भी उतरती कला होती है। हम उतरेंगे तो सारी दुनिया की उतरती कला। मनुष्यों की बुद्धि सतो रजो तमो बनती है। सतयुग से फिर थोड़ी थोड़ी उतरती कला शुरू हो जाती है। चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। हमारी चढ़ती कला तो सारे विश्व की चढ़ती कला, हमारी उतरती कला सबकी उतरती कला। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है ना। वो गुरु लोग तो सिर्फ शास्त्र सुनाते हैं। सुनते सुनते क्या हुआ, गिरते ही आए। बेहद का बाप आकर बच्चों से पूछते हैं, अभी सुनो, बाबा को जवाब दो, अभी बाबा हिसाब मांग रहा है। बेहद का बाप आकर बच्चों से पूछते हैं, बच्चे मैं तुमको इतना शाहूकार बनाकर गया, इतने हीरे जवारों के महल देकर गया, वो सब कहाँ गए? है हिसाब, कहाँ गए? कोई बिल वगैरह पड़ा है कि कहाँ कहाँ खर्च कर दिया, वो अकाउंट में जमा करें? किसी के पास नहीं है। बाबा बताएगा तुमने कहाँ गवाया। लौकिक बाप बच्चों को पैसे देते हैं, लेकिन बच्चे पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो बाप बुलाकर पूछते हैं, तुमने इतना पैसा कहाँ बर्बाद किया, पूछते हैं ना। वो कोई भी बाप होगा, बच्चों को पैसा देगा तो हिसाब तो पूछेगा। तब शिव बाबा भी आकर के हमसे हिसाब पूछते हैं, लेकिन बहुत लेट पूछ रहे हैं। 5000 साल हो गया, इसमें सब भूल गया, कोई हिसाब किताब नहीं रहा। बच्चों के पास पैसे होने से उड़ाते बहुत हैं, तो हमने भी उड़ा दिया। बाप धर्मात्मा है, बाप अगर बहुत अच्छा है, रिलीजियस है, धर्मात्मा है, लेकिन बच्चे विलायत में जाकर लाखों रुपए उड़ा देते हैं, तो हमारा बाबा भी परम धाम में बैठा रहा देख करके, हमने नीचे उड़ा दिया सारा। बाप कुछ कर नहीं सकता, अब उड़ा दिया, खत्म हो गया पैसा, फिर बाप क्या करेगा? बाप फरकती भी नहीं दे सकता, वो बच्चों को घर से निकाल भी नहीं सकता कि अरे तुमने पैसे उड़ा दिए निकलो, क्योंकि दादे की मिल्कियत है। परंतु अंदर जलते रहते हैं। वो बाप तो जलता रहेगा, लौकिक बाप, हमारा बाप क्या करेगा? कहेगा अभी मैं फिर तुमको देता हूँ, कितना अच्छा बाप है। वो बाप तो दोबारा देगा नहीं, अरे मैंने इतना दिया तुमने सब खत्म कर दिया। वो अंदर अंदर जलता रहेगा, मेरा इतना नुकसान किया, और हमारा भोलानाथ बाबा ये देखकर भी दोबारा देता है। बाप के मर जाने के बाद कोई कोई तो ऐसे गंदे बच्चे होते हैं, 12 मास में सारी मिल्कत उड़ा देते हैं। वो है हद की बातें, यह है फिर बेहद की बात। बेहद का बाप कहते हैं, तुम कितने धनवान थे, विश्व के मालिक थे, फिर कंगाल क्यों बने हो? इतना धन कहाँ किया? बाबा को ये बताना पड़ेगा ना हिसाब, कि हमने आपके कितने द्वापर युग से मंदिर बनाए, कितने मंदिर बनाए, और अभी जो थोड़ा बहुत है उसमें सेंटर खोलते हैं, खोलते हैं ना। बाबा कहते बच्चों से, बाप पूछते हैं, भारत को इतना शाहूकार बनाया, सब पैसे कहाँ गए? फिर बाप ही बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में कितना खर्च किया, शास्त्रों आदि के पिछाड़ी कितना खर्चा करते हैं, माथा भी टेकते गए, टिप्पड़ भी घिस गई ना। बहनों की तो कम घिसती है, भाइयों की ज्यादा घिसती है। तो ऐसा नहीं भाइयों ने ज्यादा भक्ति किया है, सबने किया है। अभी तो सबकी घिसती है, पैसे आदि सब कुछ गंवा बैठे, ये है ड्रामा। हम तुमको शाहूकार बनाते हैं, रावण तुमको कंगाल बनाते हैं। भारतवासियों को ही बाप समझाएंगे ना, ये किसको समझाएंगे? भारतवासियों को ही समझाएंगे। भारत ही सोने की चिड़िया थी, इतना धन था जो दूसरे धर्म वाले लूट कर ले गए। देखो ये हिसाब हमको नहीं पता है, लेकिन बाबा ने ऊपर बैठे बैठे सब देखा कि हमने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया। बाबा कहते ख्याल तो करो भारत क्या था, ये भी ड्रामा बना हुआ है। भारत ही हेविन, भारत ही हेल, अभी है नर्क, इसलिए बाबा ने सीढ़ी भी ऐसी बनवाई है जो कोई भी समझे हम पतित हैं। वो चित्र में पता पड़ रहा है ना, कैसे हम धीरे धीरे नीचे उतरते आए और अभी कहाँ हैं। छोटे छोटे बच्चों को चित्र पर समझाया जाता है ना, नक्शे बिगर बच्चे क्या समझे? स्कूल में कॉलेजों में नक्शे पर बताते हैं ना, अमेरिका कहाँ है, रशिया कहाँ है, भारत कहाँ है, सब बताते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी चित्रों पर समझाते हैं, ये नक्शे हैं। बाप ही आकर पतित से पावन बनने की सहज युक्ति बताते हैं। सहज ते सहज भी है और सहज ते सहज भी है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। नहीं करो, अभ्यास नहीं करो, प्रैक्टिस नहीं करो तो डिफिकल्टी है। सतयुग में देही अभिमानी रहते हैं, आत्मा समझती है अब शरीर बड़ा हुआ है, ये पुराना चोला छोड़ दूसरा लेना है। जैसे साक्षात्कार हो जाता है अब जाकर बच्चा बनना है। देखो बाबा पूरा सतयुग का दृश्य सामने ला रहे हैं, पुरानी खाल छोड़ देते हैं। यहाँ कोई मरता है तो रोते भी हैं और क्या करते हैं, बैंड बाजा भी ले जाते हैं, दोनों करते हैं, बैंड बाजा भी चलेगा और रोएंगे भी, तो दोनों में से क्या माने। सतयुग में तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो क्या करेंगे। शाद माना मनाते हैं क्योंकि वहां दुख नहीं है, वहां फंक्शन है, खुशी है कि ये शरीर पुराना हो गया, हमने छोड़ दिया, अब नया लेंगे। यहाँ कितना अफसोस करते हैं, कितना दुखी होते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो इसका मतलब नरक में था, तो फिर खुशी होनी चाहिए ना, गया तो। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो किस लिए, स्वर्गवासी बनने के लिए। लोगों को कहेंगे हम स्वर्गवासी बनेंगे तो समझेंगे अभी गया। बाप तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं, बाप आते ही हैं जीवन मुक्ति देने, रावण के बंधन से छुड़ाए जीवन मुक्त करते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प पहले माफी आकर राजयोग सिखलाता हूँ, कल्प कल्प ब्रह्मा के ही तन में आता हूँ, तुमको ब्राह्मण जरूर बनना है। अभी देखो लास्ट में मंत्र सुनो बाबा का, यज्ञ में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ये है, ये क्या है, पूरा पूरा ये यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं है, बहुत बड़ा यज्ञ है। ये यज्ञ है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, इस रथ को स्वाहा करना है। स्वाहा करना है माना शरीर को भूल जाना है। अश्व इस रथ को कहा जाता है, राजस्व स्वराज्य के लिए, यह सब अश्व इसमें स्वाहा होने हैं। बाबा इसका मीनिंग बता रहे हैं, राजस्व अश्वमेघ माना राजाई के लिए, स्वराज्य के लिए ये अश्व माना शरीर स्वाहा होने हैं। आत्मा तो स्वाहा नहीं होगी, आत्माएं हिसाब किताब चुक तुक कर चली जाएंगी, फिर नए सिर सबका पाठ शुरू होगा। इनको कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, क्योंकि बाबा हर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। बाप आते ही हैं नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया खलास करने। ये एक ही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है, तो समझाना चाहिए। क्या समझाना है, इस लड़ाई से ये स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, इसलिए इनका गायन शास्त्रों में है। अच्छा। मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार सब पहुंच गए ना श्री कृष्ण की दुनिया में, सबके ये रथ स्वाहा हो गए, पहुंच गए अपने स्वराज्य में अपने राज्य में। धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट है बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है। जो बात बीत गई नथिंग न्यू समझ भूल जाना है। दूसरा, इस राजस्व अश्वमेघ यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। केवल तन नहीं, तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। वरदान है, बहुत सुंदर वरदान है। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति की साधना बनाने वाले सदा समर्थवान भव। कितना श्रेष्ठ वरदान मिला, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। ये प्रवृत्ति है लेकिन पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो प्रगति का साधन भी है। इसका क्लेरिफिकेशन है, प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सद्गति को सहज ही पा लेंगे, फिर सब कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। आज का स्लोगन है, स्लोगन भी उसके अनुरूप है। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। अव्यक्त इशारे का होमवर्क याद है ना सभी को। अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत जब आप चमकते हुए सितारे सूर्य चंद्रमा समान अपनी संपूर्ण स्टेज पर अथवा मास्टर दातापन की स्टेज पर स्थित होंगे तो क्या होगा। जब हम दातापन की स्टेज पर होंगे सूर्य चंद्रमा समान अपनी संपूर्ण स्टेज पर अथवा मास्टर दातापन की स्टेज पर स्थित होंगे तो भटकती हुई आत्माएं ढूंढने वाली आत्माएं परवानों की तरह स्वतः ही पाने के लिए मिलने के लिए फास्ट गति से आपके पास आएंगी और आप सबको सेकंड में बाप द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की तीव्र गति से सेवा करनी पड़ेगी। ये है होमवर्क। ओम शांति। अभी दीदी जी आएंगे। आज तो कृष्ण की दुनिया में चलेंगे ना, या बैठे ही हैं कृष्ण की दुनिया में।
ओम शांति। जैसे कि बहन जी बार बार स्मृति भी दिला रही है और सामने आप स्वर्ग की झांकी भी देख रहे हैं, तो स्वर्ग की दुनिया में बैठ जाइए अभी से, तो उसकी सैर भी करेंगे और थोड़े ही देर में आदरणीय सुशी दीदी जी संदेशी हमारे बीच में आएंगे। वो भी वतन के नजारे दिखाएंगे, संदेश लाएंगे बहुत सुंदर वतन से। और उसके पहले अभी हम हल्दर भाई और निरंजन भाई से, अच्छा हल्दर भाई हमको बहुत सुंदर श्री कृष्ण की झांकी का एक गीत सुनाएंगे। पहले वो गीत सुनेंगे, उसके बाद आगे का कार्यक्रम आपको बताएंगे।
ओम शांति। जो कृष्ण के साथ रास करेंगे वो हाथ उठाएं। अरे वाह, फिर तो आज आना ही पड़ेगा उनको। बुलाएं सबको, मेरे साथ गाएंगे दो लाइन। आ जाओ बाल गोपाल, 1 2 3 4। कहाँ हो बाल गोपाल, मधुबन आ जाइयो, आ जाओ मदन गोपाल, मधुबन आ जाइयो। धन्यवाद।
ट्रैक बनाइए।
कहाँ हो बाल गोपाल, मधुबन आ जाइयो, आ जाओ मदन गोपाल, मधुबन आ जाइयो, मधुबन आ जाइयो। मधुबन के ये गोप गोपियाँ तुमको पुकारे, मधुबन गलियाँ, मधुबन के ये गोप गोपियाँ तुमको पुकारे, मधुबन गलियाँ। आ जाओ प्यारे नंदलाल, आ जाओ प्यारे नंदलाल, मधुबन आ जाइयो, आ जाओ मदन गोपाल, मधुबन आ जाइयो, मधुबन आ जाइयो, हाँ मधुबन आ जाइयो। तेरी तिरछी नजर तुम्हारी, सबका प्यारा बांक बिहारी, तेरी तिरछी नजर तुम्हारी, सबका प्यारा बांक बिहारी, झुमक झुमक क्या, झुमक झुमक चाल, आ जाओ तुम मधुबन। कहाँ हो बाल गोपाल,
कहां हो गाय गोपाल मधुबन आ जाइयो आ जाओ मदन गोपाल मधुबन आ जाइयो मोर मुकुट धारी है मनमोहन तुझे है रोशन मधुबन आंगन मोर मुकुट धारी है मनमोहन तुझे है रोशन मधुबन आंगन भुला रहा संसार हाँ भुला रहा संसार मधुबन आ जाइयो कहाँ हो बाल गोपाल मधुबन आ जाइयो आ जाओ मदन गोपाल मधुबन आ जाइयो मधुबन आ जाइयो मधुबन आ जाइयो आ जाओ मदन गोपाल मधुबन मधुबन आ जाइयो धन्यवाद
बहुत सुंदर आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर प्यारे बाबा एडवांस पार्टी की सब दादियां मधुबन निवासी एडवांस पार्टी के सभी भाई आप सबको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई जब भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन आता हम सब अपनी नई राजधानी में पहुंच जाते और हमारी प्यारी दादी हम सबको आज के दिन नई राजधानी का विशेष अनुभव कराती तो अभी अभी आपने गीत सुना बाल गोपाल को बुलाया लेकिन वो बाल गोपाल बहुत छोटा था अभी उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा है ना गांव से जिसे सुना बहुत अच्छा है उसको इनवाइट किया लेकिन अभी बाबा कहते हैं ऐसा अपनी स्टेज बनाओ कि बाल गोपाल आप सबके सामने आ जाए तो इसलिए अभी हम सभी आज क्या करेंगे भोग के टाइम भाई लोग कहाँ जाएंगे क्या बनेंगे गोप बनोगे बहने क्या बनेंगे गोपियां बनेंगी या श्री कृष्ण के साथ गोपियां रास करने वाली बनेंगी जो रास करेंगी श्री कृष्ण के साथ वो हाथ खड़ा करो अच्छा और गोप जो भाई वो रास करेंगे सब करेंगे ना तो ठीक है तो पहले से ही बाबा को बता देंगे और श्री कृष्ण को आपका मैसेज दे देंगे आप सभी सूक्ष्म वतन में जाकर के श्री कृष्ण के साथ वहां पर रास करना अभी हम सभी जाएंगे प्यारे बाबा के पास बाबा को और नई दुनिया के पहला प्रिंस को भोग स्वीकार कराएंगे और पहला प्रिंस तो अकेला होगा नहीं उनके माँ बाप भी होंगे उनके फ्रेंड्स भी होंगे राधा भी होगी सब होंगे तो सब के सब मिलकर के हम रास करेंगे और रास के साथ फिर भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वह सुनेंगे और उसके बाद जो नई दुनिया की तो रास अपनी न्यारी और प्यारी होगी लेकिन संगम युग की जो रास है वो उससे भी ज्यादा अच्छी है तो फिर संगम युग की रास हम सब मिलकर के करेंगे तो अभी हम सभी चलते हैं वतन में नई दुनिया में और बाल गोपाल के पास और साथ साथ नई दुनिया में गोप और गोपियां क्या करेंगे वो आप सबको अनुभव करना है अभी हम भोग से पहले सविता बहन को बुला रहे हैं कि स्टेज पर आ जाए और विजया बहन भी स्टेज पर आ जाए टीचर्स मैंने ध्यान दें कल भी बताया था कि टीचर्स मैंने जो भी भट्टी की टीचर्स मैंने अन्य टीचर्स मैंने ने भट्टी की जो भी टीचर्स मैंने आई हुई हैं एक इधर आ जाए एक इधर कोई भी वह आज प्रातः 9:30 से 10:15 के बीच में अपने सेंटर की और रास्ते की और वापस जाने की टोली टोली डिपार्टमेंट से प्राप्त कर लेंगे। अभी हम चलते हैं वतन की ओर बाबा के पास और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। भोग के संदेश के बाद फिर आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ करके नई दुनिया में श्री कृष्ण के साथ कैसे रास करना है, आज आपको मौका मिल रहा है। नई दुनिया में तो करेंगे ही, लेकिन संगम युग की रास वो कैसी प्यारी और प्यारी है, वह सबको करना है। अच्छा, ओम शांति।
Thank you. Thank you. बिन कलिया चुनने को,
कुछ बिन कलिया चुनने को
तरस रहे, तरस रहे जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को,
धुन मुरली की सुनने को
अब तो दर्श दिखा दे नट खट क्यों दुबधा में डाला रे, कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा,
वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा,
मन ही मन क्यों जले राधिका मोहन तो है सबका प्यारा,
मन ही मन क्यों जले राधिका मोहन तो है सबका
वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, जमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे,
जमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे,
तन मन डोले कान्हा ऐसी बंसी मधुर बजाए रे, सुध बुध
कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की,
रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की।
अभी हम सभी संदेशी के साथ वतन में चलेंगे और वहां बैठकर ही वतन का संदेश सुनेंगे और वही अनुभूति करेंगे। उसके बाद जैसे बताया कुछ वरिष्ठ भाई बहनों को हम मंच पे बुलाएंगे और जैसे दीदी बता रहे थे कि आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर के फिर रास करेंगे, वो भी थोड़ा अनुभव करेंगे, खेल पाल करेंगे। पहले बाबा का संदेश सुनते हैं।
ओम शांति। आज हम सब बच्चों के लिए भविष्य दुनिया के साथ साथ जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण, तो इस विशेष दिवस की सब भाई बहनों की स्नेह भरी यादें भावनाएं लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन का नजारा तो आज बहुत सुंदर था, पूरी ही गोल्डन दुनिया का साक्षात्कार हो रहा था और एक तरफ चमचमाते हुए डायमंड और दूसरी तरफ ऊपर से देख रही थी इंद्रधनुष की तरह कुछ लाइट के किरणें दिखाई दे रही थी और उन किरणों से जो सतयुग दुनिया के महल बगीचे या अन्य जो भी चीजें थी सबके ऊपर गोल्डन रिफ्लेक्शन था। कहां पर गोल्डन स्टार, कहां पर गोल्डन रेस, लेकिन वो सभी कलर के बीच में गोल्डन मिक्स होने से उसकी शोभा बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए। बाबा का भी बहुत सुंदर श्रृंगार था और बाबा जैसे नजदीक आए बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा आज तो अपनी आने वाली, जहां हम जाने वाले हैं, राज्य करने वाले हैं, अपनी दुनिया के सुंदर नजारे देख रही हूं। तो बाबा मुस्कुराए। कुछ सेकंड के लिए क्या देखती हूं कि बाबा का श्री कृष्ण का बाल रूप दिखाई दिया और उनके आसपास इतने गोप गोपियां थे सजे हुए जो बहुत डांस करने लगे और जैसे वो डांस करते थे उस डांस की आवाज से एक मधुर संगीत आता था और उस डांस के अंदर जो दिव्यता थी और जो तालमेल था वो भी देखने का बहुत मन इतना मोहक होता जा रहा था और बाबा सबको ऐसे रास करा रहे थे। फिर कुछ सेकंड में फिर वही वतन का स्वरूप बाबा साकार में दिखाई दिए। बाबा ने कहा, बच्ची कहाँ गए थे? मैंने कहा, बाबा आप ही तो हमको नई दुनिया में ले गए थे। बाबा ने कहा, संगम युग के अंदर बच्चे रहते हुए अपनी दुनिया का अनुभव और सूक्ष्म साक्षात्कार और सूक्ष्म अनुभूति कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बाबा मेरे को पूछा कि सब बच्चे क्या अनुभव कर रहे हैं। मैंने कहा, बाबा ये तो हर एक बच्चे का अपना पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा, नहीं बाबा, हर बच्चे की सतो प्रधान और गोल्डन स्टेज को देखते, हर एक बच्चे को कैसे भी करके समय जो आ रहा है कैसे भी करके गोल्डन स्टेज में तो पहुंचना ही है और बाबा बच्चों को वतन में बुला करके गोल्डन स्टेज का अनुभव कराते हैं और वही स्वरूप और नई दुनिया का विशेष अनुभव कराते हैं। तो बाबा ने कहा, आज का दिन ऐसा है बच्चों के लिए सारा दिन, दिन तो क्या ऐसा समय ऐसा है कि अभी अपने आप को नई दुनिया के नजारे और हम उस दुनिया में कैसे होंगे वो साक्षात्कार और वो अनुभव करना है। फिर तो बाबा ने ऐसे दोनों बाहर पसारी तो वतन के फरिश्ते इतने सारे बच्चे वहां पर थे तो बाबा ने कहा कि सतयुग में तो रास करेंगे ही लेकिन वतन के अंदर अभी क्या करना है। तो सबने क्या किया, फटाफट बाबा का हाथ पकड़ा और बहुत सुंदर रास करने लगे और बीच में बाबा थे और बाबा का स्वरूप कभी श्री कृष्ण दिखाई देता और बच्चे कभी बाबा का साकार रूप दिखाई देता, कभी बाबा कृष्ण के रूप में किस बच्चे के पास और कभी कोई राधा दिखाई देती। तो इतना सुंदर दृश्य था और सबकी सुंदर सुंदर ड्रेस भी चमक रही थी। बाबा ने कहा गोल्डन युग में तो सब होगा ही लेकिन संगम युग के अंदर भी बच्चों को अपने भविष्य नई दुनिया की जो सुंदर ड्रेस है, एक तो सुंदर शरीर तो होगा ही लेकिन वहाँ की जो प्योरिटी है, जो ब्यूटी है, जो संपन्नता है उसके अनुभव अभी करते जाएं और अपनी दुनिया में जाना है। फिर तो बाबा ने इतना रास कराया वतन में और बाबा ने कहा आज का दिन तो बच्चे वैसे ही झूम रहे हैं लेकिन बाबा बच्चों को सदा पूरे संगम के अंदर सदा ही खुशियों के झूलों में झूलाते रहते हैं और बच्चों को कहते कुछ भी हो जाए सदा खुशी के झूले में झूलते रहे। फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया और भोग स्वीकार कराते ही बाबा ने क्या किया, सभी एडवांस पार्टी वालों को, मम्मा दादी दीदी सबको इमर्ज किया और सबके सब विश्व महाराजन की जैसे सभा लगती है वो सभा दिखाई दी और वो सभा के अंदर इतना अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा था कि कैसे विश्व महाराजन आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर के इतना प्यार सम्मान एक दूसरे को जो रिस्पेक्ट देते हैं वो दिखाया। फिर बाबा ने सबको कहा बच्चे देखो ये ब्राह्मण परिवार क्या कर रहा है। तो सब दादियां बाबा को देख के कहती हैं ब्राह्मण परिवार भी कितना बड़ा भाग्यशाली है जिन्हें बाबा से भाग्य प्राप्त हो रहा है और सदा अपने भाग्य के गीत गाते रहे। फिर बाबा ने सबको भी भोग स्वीकार कराया और भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने क्या किया, सबको एक गिफ्ट देना चाहा और जो गिफ्ट था अब बाबा के हाथ में थी लेकिन वो गिफ्ट एक बांसुरी के रूप में थी और लेकिन वो बांसुरी जो थी गोल्डन भी थी। उस बांसुरी के ऊपर शिव बाबा इतना डायमंड की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा था और टॉप पर जो चमकता हुआ डायमंड दिखाई दे रहा था उससे जो किरणें निकलती थी चारों तरफ वातावरण को बहुत अच्छा बना रहे थे। तो एक ऐसी बांसुरी थी और फिर नीचे से नीचे उसका एक झूमर था और उस बांसुरी के झूमर में भी गोल्डन हीरे लगे हुए थे, सिल्वर भी थे गोल्डन भी थे, गोल्डन ज्यादा थे सिल्वर का थोड़ा रिफ्लेक्शन था और वो झूमर थे और वो झूमर की क्या होता था धीरे धीरे म्यूजिक बजता था। और फिर बाबा ने क्या कहा कि बच्चों को क्या करना है कि बाबा ने जो उन्हें अनुभव कराए हैं वो अनुभव की मधुर अनुभूति मधुर संगीत वो अनुभव सबको कराते रहें तब जाकर के नई दुनिया का भी लोग अनुभव करेंगे और बाप की भी प्रत्यक्षता होगी और नई दुनिया में राज्य करने वाले बच्चों की भी प्रत्यक्षता होगी। तो उस बांसुरी के ऊपर लिखा हुआ था शिव बाबा ही मेरा सब कुछ है और नीचे झूमर में लिखा था शिव बाबा से प्राप्त वरदान और अनुभूतियां उसकी खुशी में झूमते रहें, और बीच में जो बांसुरी के ऊपर, बांसुरी के बीच में जो गोल्डन स्टार्स चमक रहे थे, बाबा ने कहा बच्चों को बाबा ने कितने वरदान दिए हैं और कितने अनुभव कराए हैं, ये वरदानों के गोल्डन मोती हैं, गोल्डन हीरे हैं, उनको बार बार रिपीट करें, उसका अनुभव करें और औरों को भी कराते रहें। फिर बाबा ने सबको याद दिया, फिर से नई दुनिया का साक्षात्कार कराते हुए नई दुनिया के अनुभव कराए और कहा सदा यही खुशी में रहो। अब हम अपनी नई दुनिया में गए कि गए, हमारी नई दुनिया अभी आई कि आई, बस कुछ पल की ही बात है। ऐसे कह के बाबा ने सबको बहुत याद दिया। ओम शांति। सभी बैठे रहे, मंजू बहन बैठो।